एजुकेशन, कि एजुकेशन को हम कितना हमें प्रमोट करें। ना मैं हमें बात करता हूँ, हमें एक कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशन मीन्स हमें किसी कोई भी जॉब देनी है, अपना प्रोफेशनल लाइफ इंप्रूव करना है। मगर बेसिकली एजुकेशन का मतलब ये अपनी लाइफ को कितना तेज संवारना है, कितना हमें अपनी लाइफ सुधारनी है, उसमें आपके पास एथिकल लेवल कितना इंप्रूव करना है, बेसिकली हमारा एजुकेशन का मतलब ये होता है। मगर उसके बाद जब आप दुनियावी जिंदगी में अपने आप गुजारना पड़ता है, उसकी हमें प्रोफेशनल लाइफ उसके लिए कैसा करना पड़ता है, तो एजुकेशन इज द बेसिक नीड। सिमिलरली जब हम कोई बेटर लेवल पे कोई काम कर रहे हैं तो हमारा आज का कॉम्पिटिशन ज्यादा बढ़ रहा है एजुकेशन। अगर आपकी बेटर लेवल पे आपकी एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद आजकल हमारे पास मास्टर और पीएचडी, उसमें आपकी काफी कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। हमारे पाकिस्तान में आजकल मास्टर और पीएचडी उसे काफी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, मगर यहाँ पे फैसिलिटीज ना होने बराबर है, तो इसलिए हमें यहाँ पर मसले आते हैं। सपोज अगर हम यहाँ बेचर लेवल कर रहे तो बेचर लेवल के बाद हमारे पास कौन से अपॉर्चुनिटी मौजूद है। नॉर्मली अगर आप कोई भी बेचर लेवल कर रहे हैं, चाहे आप अपनी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी और फील्ड में कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास काफी कॉम्पिटिशन आती है कि हमारे पास जॉब लेने के लिए 15,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह मिलती है। उसके बाद देख रहे हैं कि दुनिया आगे जाएगी, क्योंकि एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है शुरू में जब हम यहाँ पढ़ते थे मेरान में, तो हमारे पास मास्टर लेवल में हमें 3 लड़के 4 लड़के आते थे, ठीक है। अब देखेंगे वहाँ पे तकरीबन 50-60 लड़के आ रहे हैं, 70 लड़के आ रहे हैं, उसके बाद आपका मुख्तलिफ फॉरेन की स्कॉलरशिप मौजूद है जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। अभी पैसा में अगर आप बेटर लेवल मौजूद हैं तो आपका अभी स्टेप मौजूद है, आप कौन से स्टेप फॉलोअप कर सकते हैं जिसमें अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मली जो लड़के सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर मौजूद हैं उनके लिए ऑप्शन मौजूद हैं। पहले तो आप एक जनरल गेट
फैब्रिक पे काम कर रही है, टेक्सटाइल पे काम कर रही है, कोई इंसान सेमीकंडक्टर काम कर रही है, कोई सोलर सिस्टम पे काम कर रही है। अब हर चीज की डेवलपमेंट आपकी दर्ज की आती है, ये नहीं कि आपने एक चीज बना ली उसके बाद आपकी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। मगर जब आप वहां पे सिस्टम में जाके रिसर्च करेंगे, उस चीज को इम्प्रूव करेंगे, फिर आप मार्केट में कॉम्पीट करेंगे, तो उससे सबका फायदा होगा। सो नॉर्मली फॉरेन कंट्रीज पीपल आर यूजिंग रिसर्च आरएनडी रिसर्च डेवलपमेंट सेक्टर्स वी आर मास्टर एंड पीएचडी स्टूडेंट कैन वर्क इन इंडस्ट्रीज एंड सिमिलरली इफ यू आर गेटिंग द हाई एजुकेशन सो मीन्स यू विल इंक्रीज योर स्किल्स एंड यू विल इंक्रीज नॉलेज। हमारा मेन पर्पस है अपने आपके स्किल्स कितना इंप्रूव करें, कितना अपने नॉलेज को इंप्रूव करें। ये जरूरी नहीं कि हम और बैचलर लेवल कर लिए तो हमने अपनी एजुकेशन की जो डेडलाइन थी हमने खत्म कर लिया। अगर आपने एजुकेशन को आगे नहीं कंटिन्यू किया तो मींस में भी आप 5 साल या 10 साल के बाद फील होगा कि मैंने गलती की, अपनी मास्टर या पीएचडी को कंप्लीट नहीं किया। मैं आपको अपनी कहानी बताऊं, जब मैंने यहाँ पे मेरा से अपनी क्वालिफिकेशन की बैचलर में, तो उसके बाद मुझे मास्टर की ऑफर हुई मीरान में, कहा मास्टर कर ले। मैंने कहा बहुत हो गई, बैचलर लेवल हमने 4 साल गुजार लिया, उसके बाद मास्टर नहीं करने। जब उसके बाद 1 साल पूरे कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर कभी फैसलाबाद मैं धके खा रहे जॉब के लिए, तो उसके बाद फील हुआ कि नहीं कि हायर एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। उसके बाद 1 साल के बाद मैंने बीच में टीचिंग इन्वॉल्व किया, वहाँ पे ट्यूशन टीचिंग हुआ की इस्लामाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में यहाँ वापस आ गया जमशेदपुर में, तो यहाँ पर अपनी मास्टर स्टार्ट की। तो उसी दौरान आई वाज फाइनल लेक्चरर फॉर 2 ईयर्स, उसके बाद मास्टर भी कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैंने अपनी अपनी जो जॉब थी यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट कर ली। तो उसके बाद मुझे तमन्ना हुई कि अगर मैं टीचिंग में आ गया हूँ या मुझे किसी इंडस्ट्री में जाना है तो अगर मेरी क्वालिफिकेशन हायर होगी तो मेरे लिए बेहतर है। तो उसके बाद मैंने जैसे अपनी मास्टर कंप्लीट की तो मैं उसके बाद मेरा नजदीक में दाखिला ले रही एज ए पीएचडी कैंडिडेट। तो उसके बाद हमारे एक दोस्त है सैयद कुर्बान शाह, मैं भी काफी लोग जानते होंगे, वो 04 इलेक्ट्रिकल के यहाँ मेरा के, तो उन्होंने कहा कि आप साउथ को रहें जहाँ एसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो उसमें फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया, मेरी कॉलेज टेस्ट क्वालिफाई थी गेट जनरल गेट सब्जेक्ट और पब्लिकेशन मौजूद थी मेरी। तो उसके बाद मेरा नाम रिकमेंड हो गया कि आप साउथ को ले जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर आएगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हमारा अप्लाई करने का किस तरह तरीका होगा और हम किस तरह से अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। मेन पर्पज है कि अगर आप जब थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर मौजूद हैं, एक तो आपके नाम आईलेट्स अगर आपका पैसे मौजूद हैं जिसकी फीस तकरीबन 20,000 तक होती है, अगर आप अपना बैंड 6.5 या 7 बैंड इतना कंप्लीट करते हैं तो आपका अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। उसमें आपका ऑप्शन स्कॉलरशिप के लिए $1200 $1500 तक भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है, मन आगे रहेगा। अगर आप प्रोफेसर आपको दे रहा है तो तकरीबन $500 से लेकर $700 तक प्रोफेसर दे सकता है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम किसी कंट्री की स्कॉलरशिप पे जाना चाह रहे हैं, तो कोई आपको साउथ कोरिया की गवर्नमेंट दे रही है या आपके पास जर्मनी को स्कॉलरशिप दे रही है, तो आपके पास $1500 तक ना 1.5 लाख रुपये आपको मिल सकते हैं। उसमें आप अपने तकरीबन फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैं जब मैं गया था छुट्टी पे, तो उस टाइम हमें काफी प्रॉब्लम देखा था, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मगर जब मैं स्कॉलरशिप हो गई थी उस टाइम तकरीबन $150 तकरीबन 1.5 लाख रुपये में ले रहा था, तनख्वाह मिल रही थी प्लस मुझे अपनी स्कॉलरशिप मिल रही थी। उसमें ये मेरे फैमिली प्रॉब्लम जितने मौजूद थे फाइनेंशियली और जो मैं अपने प्रॉब्लम से सॉल्व हो गए थे। जब मैं पीएचडी करके वापस आया तो मिसाल में जितने भी प्रॉब्लम मौजूद थे जब पीएचडी से पहले सारे में खत्म हो गए थे, उससे आपको फायदा हुआ, ठीक है। जब आपकी पीएचडी लेवल या आप मास्टर लेवल कर रहे हैं तो मीन्स आपकी एक रेस्पेक्ट बढ़ रही है माशरे में। तो आप ये नहीं जब बैचलर कर लेंगे हम 10,000 15,000 तनख्वाह कमा लेंगे तो हमारी इनफ है। मगर अगर आपको कंप्लीट करना है, अगर आप सोसाइटी में कंप्लीट करना है, आपको वर्ल्ड लेवल पर कंप्लीट करना है, अपनी एजुकेशन लेवल को इंप्रूव करना है, अगर आपने छोड़ दिया तो मीन्स आपकी बड़ी मिस्टेक होगी। अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि अगर हम फाइनल मौजूद हैं कि हम स्कॉलरशिप कैसे लें, उसके लिए आपके पास बेसिक जो ऑप्शन है रिसर्च प्रपोजल कि आप मैं प्रोफेसर हूँ, तो अगर कोई लड़का मेरे पास आता है कि मैं आपके पास काम करना चाह रहा हूँ, मैं आपके अंदर कोई रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो अगर लड़का मुझे मोटिवेट नहीं कर पा रहा प्रॉपरली तो मैं मोटिवेट नहीं होगा कि क्या मसला है, वो किस तरह से वो काम करना चाह रहा है और उसकी प्लानिंग क्या होगी। उसमें रिसर्च प्रपोजल जो आप मौजूद है तो रिसर्च प्रपोजल में आप शो करेंगे मेरा काम मेरी एफिशिएंसी और मैं क्या करना चाह रहा हूँ और मेरी नॉवल्टी क्या मौजूद होगी, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप अपने आप को प्रोफेसर के सामने ऐसे हम देख सकते हैं कि मेरी ऑप्शन ये मौजूद हैं और मैं ये करना चाह रहा हूँ। उसके बाद प्रोफेसर आपको रेस्पॉन्स दे सकता है, बंदा मेरे काम का है और मेरे रिसर्च के मुताबिक काम कर रहा है। अब रिसर्च प्रपोजल जैसे फॉर गेटिंग द स्कॉलरशिप, रिसर्च प्रपोजल इज द की पॉइंट, द की कंपोनेंट फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप। उसके लिए हमारे पास
इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकल रहा है,
उसके बाद हमें पता है कि वेस्ट वाटर के अंदर सपोज काफी किस्म के पॉल्यूटर्स होते हैं जो बना आपकी ह्यूमन प्लस मैरीन एनिमल के लिए टॉक्सिक मौजूद हैं। उसकी अब के बाद हमने थोड़ा सा बता दिया कि वेस्ट वाटर इधर से निकलता है, ये होता है इसमें, ये उसने होता है, ये प्रॉब्लम आते हैं, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया। अब जो भी बंदा होगा उसे पता चलेगा कि ये बंदे ने प्रपोजल भेजा है, प्रपोजल किस चीज के बारे में भेजा है, माना कौन से टॉपिक में काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक तो क्लियर हो जाएगा, इंट्रोडक्शन आपको बता देगा कि बंदा कौन सी फील्ड में काम करना चाह रहा है। इसी तरह से जो भी बंदे मुख्तलिफ फील्ड में तो वो जिस टॉपिक पर काम करना चाह रहे हैं उसको आप मेंशन कर देंगे इंट्रोडक्शन में कि मेरा प्रोडक्ट ये है। उससे जरूरी नहीं कि आप 10 लाइनें पांच लाइनें, उससे पांच लाइन के अंदर आपने पूरा जो भी इंट्रोडक्शन है वो बता दें कि उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन बता देंगे प्लस उसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम कौन से मौजूद है, क्योंकि रिसर्च आपकी फोकस करती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। अगर सपोज हमारे पास एक वेल वाटर था और काफी लोगों ने काम किया उसकी ट्रीटमेंट की, मगर उसमें अभी तक मसले आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास ये प्रॉब्लम मौजूद है और प्रॉब्लम की वजह से हमारे लिए काफी इश्यूज आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, आपने एक इंट्रोडक्शन प्लस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मेंशन कर लिया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जिसमें मौजूद होता है कि लिटरेचर रिव्यू, नाम ये होता है कि लोगों ने क्या काम किया, माना एक पब्लिकेशन साथी रिसर्च पेपर जो लोग काम करते हैं अपना पेपर पब्लिश करते हैं, एडमिशन नहीं फाइंडिंग करते हैं, मैंने कोई भी प्रॉब्लम उठा लिया अपने, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स लगाए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपनी जो फाइंडिंग्स आती हैं, जो ऑब्जर्वेशन आती हैं वो दिखाते हैं कि हमने ये काम किया। आप क्या करेंगे उसमें जो आपकी जिस टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड पांच छह बंदों का बता देंगे काम, भाई ये बंदे ने ये काम किया मगर इसका ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, इस बंदे ने ये काम किया इसका ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ। इस तरह से आप लिटरेचर रिव्यू में आप चार पांच बंदों को बता देंगे कि ये लोगों ने ये काम किया था, वो आपको पब्लिश हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वर्बल बताएंगे उस बंदे ने ये काम किया था, आपको जो चीज पब्लिकेशन फॉर्म में पब्लिकेशन फॉर्म में डेटा आई हुई है आप वो बताएंगे लिटरेचर रिव्यू में कि लोगों ने ये काम किया था, मगर काम करने के बाद भी उसमें अभी मसला आ रहा है। दीज पीपल वर्क आउट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बट दे डिड नॉट फाइंड एनी सुटेबल सॉल्यूशन। ठीक है, आपने एक बता दिया उनका समय पर आ गई, एक आपने बता दिया उन्होंने अभी तक कामयाब नहीं किए। अब उसके बाद आप आता है कि अगर आपने उनकी काम को आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से काम किया था, कौन से प्रॉब्लम मौजूद थे, तो आपके पास क्या आइडिया है, आप क्या काम करने जा रहे हैं। अब भी आपकी मेन चीज याद आती है कि आपका नॉविल आइडिया क्या है, अगर आपके पास जहन में कौन सी चीज है, आप कौन सी चीज करना चाह रहे हैं, अगर वो चीज करने से जो प्रॉब्लम मौजूद है आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है, वो उसमें प्रोफेसर उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। जब आप कहीं पे भेजते हैं कोई भी रिसर्च प्रपोजल, आपका प्रोपोज आइडिया इज इंपॉर्टेंट। स्कॉलरशिप के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, तभी मैं पहले रिसर्च प्रपोजल आ गया हूं ताकि आपकी क्लियर हो जाए, क्योंकि स्कॉलरशिप ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा होना और प्रिसाइज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसीलिए मैं पहले रिसर्च प्रपोजल फोकस कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपका स्कॉलरशिप वगैरह के कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो प्रपोज आइडिया क्या है कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया कि हमारे पास प्रॉब्लम ये मौजूद है, लोगों ने ये काम किया मगर अभी तक उसमें मसला है। उसके बाद आप कोई आइडिया दे रहे हैं, सपोज हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं सपोज हमारे पास कोई भी हमारे पास नेचुरल मटेरियल्स हैं, वो कोयले को जलाने के बाद मिलती है राख, हम राख को यूज कर रहे हैं, या राख के अंदर कोई जो ब्लैक टी आती है वेस्ट, उसको हम मिक्स कर लेते हैं आपस में, एक मटेरियल बना लेते हैं। ठीक है, बायोचार बना लेते हैं, ठीक है, या एब्जॉर्बेंट बना लेते हैं, तो उसके थ्रू उसके हम ट्रीटमेंट कर लें। हम उसके बाद क्या करें, हम आइडिया दे रहे हैं कि अगर हम फ्लैश प्लस हम ब्लैक टी जो आपस में मिक्स करके एक नया मटेरियल बनाएं, उसके बाद उस मटेरियल की वेस्ट वाटर को हम टेस्ट करें, तो उससे हमें पॉसिबिलिटी है कि हम उसकी जो वेस्ट वाटर की जो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं उसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, एक आपने आइडिया दे दिया, माना ये प्रोफेसर जब आपका पढ़ेगा पेपर रिसर्च प्रपोजल तो वो देखेगा बंदे का आइडिया क्या है, अगर लगता है कि बंदे में दम है, ये वाकई हमारे लिए सुटेबल हैगा, इसके लिए मना नहीं आइडिया मौजूद है जहन में, तो फिर प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करने में देर नहीं करेगा, आपको दे देगा ओके यू आर माय स्टूडेंट,
इन माय मास्टर पीएचडी, ठीक है।
तो आपका रिसर्च प्रपोजल जो है आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको जो भी बनाएंगे एक पेज का होना चाहिए, ये नहीं आप 10 पेज बना लें क्योंकि ये प्रोफेशनल फर्स्ट टाइम में होगा। एक पेज का बनाए मगर उसमें प्रिसाइज बनाए, प्रिसाइज एंड इफेक्टिव, ठीक है। उसमें आपका इंट्रोडक्शन आ गया, सेकंड नंबर में लेटेस्ट रिव्यू आ गया, एंड थर्ड नंबर पे आपका प्रपोज आइडिया आ गया, क्या काम करना चाह रहे हैं और कौन से नॉवेल आइडिया के तहत रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक ही पेज पे काफी है। उसके बाद फाइनली उसमें आप ले सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव, कि आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है। रिसर्च का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये हम अपने बता देंगे। माय ऑब्जेक्ट इज टू ट्रीट द वेस्ट वाटर बाय डेवलपिंग द बायोगैस, रिलेवलिंग द एनवायरमेंट, इस तरह से आप भी बना लेंगे। तो आप एक पेज का जो आपकी रिसर्च प्रपोजल है देते हैं, ठीक है। तो उसमें आप मुख्तलिफ जो है टॉपिक पे बना सकते हैं, नहीं वो तो भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में बनाते हैं रिसर्च मटीरियल, रिसर्च कौन से चाहिए, बाहर आपका कमी नहीं है, बाहर
दे रहे होते हैं,
बाहर
वहाँ पे कौन सी टेक्निक आप,
उसके अंदर ही बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में, आपका जो आइडिया है प्रपोज आइडिया उसके अंदर ही बता रहे हैं। मिसाल आप कोई मटीरियल
ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं,
ऑब्जेक्ट में बता दें या आप जो प्रपोज आइडिया है उसके अंदर ही बता रहे हैं।
मोस्टली ऐसे होता है कि जो आपने इंट्रोडक्शन देख रहे हैं वो जैसे हमने आर्टिकल पढ़े होते हैं तो उसमें तीन पैराग्राफ आते हैं। एक तो ये होता है कि किस बंदों ने ये है क्या और किसने काम किया है, दूसरा ये होता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तीसरा वो होता है कि हम इस प्रॉब्लम को मतलब कौन सी टेक्निक यूज करके क्या कर रहे हैं।
ये बात यही है, मन आपका पूरा जो है ना इंट्रोडक्शन इसी में आ जाएगा कि कौन सी टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं, प्रोमिसर क्या मौजूद है, लोगों ने क्या काम किया है, आपका प्रॉपर आइडिया क्या होगा। प्रॉपर आइडिया के अंदर ही बता सकते हैं कि आई कैन प्रिपेयर द मटीरियल बाय यूजिंग दिस मेथड, उसी में दिखा दे। जरूरी नहीं आप मटीरियल मेथड रखे हैं भाई मुझे कौन से केमिकल चाहिए, मुझे कौन से मटीरियल चाहिए, कौन से इक्विपमेंट चाहिए, फॉरेन कंट्री के लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है, आपको जो भी चीज चाहिए मिल जाएगी। सिर्फ आसान मसले होते हैं कि हमें भाई सब भी ऐसे चाहिए तो 3 माह के बाद हमें इंतजार करना पड़ता है, 3 माह के बाद मिलता है, ठीक है। फॉरेन कोई इशू नहीं है, फॉरेन में अगर मैं वहाँ पे बीएससी करता था तो तकरीबन पर वीक में तकरीबन 3 लाख रुपया खर्चा होता था मेरे रिसर्च में, 3 लाख। अगर पाकिस्तान में 3 लाख रुपये देंगे नहीं, ठीक है। आपके एक सैंपल को करप्टाइज करनी है, सफेद से मांग करनी है एक चीज की, तब आपका पेन है पेन भी सैंपल का ले लिया हमने की सफेद से मालूम कर रहे हैं, सबके से अगर 12,000 सैंपल पड़ता था एक सैंपल, अगर आप एक हफ्ते में 10 सैंपल बना लेते हैं तो 1,20,000 आपके एक सैंपल बन जाएंगे। उसके बाद काफी केमिकल आते हैं काफी इक्विपमेंट हम यूज करते थे तो कम से कम 3 लाख रुपए पर वीक वहाँ पे रिसर्च एक बंदे पे खर्च हो रहा था, ठीक है। अगर आप लेबोरेटरी में 10 बंदे तो तकरीबन 30 लाख रुपए, इसलिए हमारे पास सारे में इतने पैसे या इतने फैसिलिटी मौजूद हैं वो रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप वही चीज़ अगर पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करो और पाकिस्तान में रिसर्च करो तो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे जस्ट खुआरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जो काम आप एक दिन का काम है वो में भी आप पाकिस्तान में 6 माह लग जाएंगे, उसमें फिर आपको रिजल्ट भी होगी काफ़ी। तो इसलिए बेहतर आप ये अगर आप बैचलर लेवल अपनी कंप्लीट कर रहे हैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने राइटिंग को इम्प्रूव करें, उसके बाद अपने आप को ग्रो करें कि अगर मुझे 9 ईयर के अंदर ही फॉरेन में कोई मुझे स्कॉलरशिप मिल जाती है तो बेस्ट ऑप्शन है। जैसे आपने डिग्री आपने ली उधर आपकी स्कॉलरशिप मौजूद हो आप निकल जाए, आपका उसमें बीच में कोई भी गैप ना हो। ये नहीं कि मैं चलो देखता हूँ 2 साल के लिए मैं जॉब कर लेता हूँ, जॉब करने के बाद जब मेरा मूड हुआ तो फिर मैं देख लूंगा, तो उसके बाद आपकी जो एजुकेशनल या अकेडमिक जो आपकी स्किल्स मौजूद हैं वो आपकी फिर कम हो जाएगी, फिर आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ जाएंगे तो उसमें फिर आप मजा नहीं आएगा, फिर कहेंगे तो ठीक है अब मैं घुस गया हूँ जॉब में तो इस पर भी चलाता हूँ, तो उसमें फिर आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। अब मेरे ख्याल में जितने लोग ने बैचलर की है उन्होंने सुस्ती भी छोड़ दिया, मेरा 10-15 साल के छोड़ दिया, अब कहते हैं अगर हमने गलती की, अगर हम उनसे कर लेते मास्टर या पीएचडी कर ले तो हमारे लिए बेहतर था। इसी तरह से तो मैं आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे मैं दयाउद नसीम में काम कर रहा हूँ तो दाऊद नसीम में लोग 15-20 साल से भी काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे तकरीबन 4-5 साल हुए हैं दिनों, तो मैं उनसे अब आगे चला गया ऊपर पोजिशन में, मैं सुबह शायद 12 नंबर पे डिपार्टमेंट में, अब मैं 2nd नंबर पे हूँ, ठीक है। मना ये सब क्या है एजुकेशन की वजह से, आपने पीएचडी कर ली अपनी पब्लिकेशन बना ली अपना एक प्रोफाइल बना लिया उसी वजह से आप ऊपर जा रहे हैं। अगर आप मास्टर या बैचलर लेवल पर आ रहे हैं तो लोग आपको समझेंगे बैचलर किए या किसी काम का नहीं है तो आप उसको इग्नोर करते हैं। अगर आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं एजुकेशन के हिसाब से आपने मास्टर क्या ली, उसके बाद पीएचडी क्या ली, आपने पब्लिकेशन क्या ली, कुछ आपने प्रोजेक्ट ले लिए कहीं से, तो फिर आपकी आप जंपिंग करेंगे, आपने कैरियर है या आपका जो जो पोजिशन है आपकी जल्द जंप करेंगे, तो उससे आप फायदा होगा। तो आपकी अगर अभी बैचलर लाइफ मौजूद है, शादी के बाद में भी काफी मसले आते हैं, तो फिर आपके लिए पीएचडी करना पॉसिबल नहीं होता, तो अगर अभी बैचलर हैं तो अभी आप जल्दी स्विच कर सकते हैं, विद इन 3 या 4 ईयर्स के अंदर अपनी मास्टर पीएचडी आपकी कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप फाइनल ईयर मौजूद हैं तो एक आप रिसर्च प्रपोजल बना चुके, ठीक है, रिसर्च पेपर पढ़े, आपका होता है मेन आइडिया आता है आपका रिसर्च पेपर से, ऐसे आपका आइडिया नहीं आएगा, विदाउट रीडिंग रिसर्च पेपर यू कैन नॉट मेक एनी आइडिया। आप क्या करेंगे, रिसर्च पेपर स्टडी करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा रिसर्च पेपर होते क्या है और लोग किस तरह काम कर रहे हैं, कौन सी किस्म की फाइंडिंग कर रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ठीक है। उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट मौजूद है, तो नाम है हम जो इंजीनियरिंग वाले लोग होते हैं तो साइंस डायरेक्ट,
उसके बाद फोकस करें कि जब आप पेपर रीडिंग करेंगे
जब आपने 5-6 पेपर पढ़ लिए ठीक है, उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है रिसर्च पेपर होते क्या है, कि लोग किस तरह काम कर रहे हैं, उसकी रिसर्च को किस तरह फाइंड कर रहे हैं, उसका मेथड क्या होते हैं, और उसके बाद उसकी फाइंडिंग क्या होती है, और पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर आप क्या करें, जब आपने पेपर पढ़ लिए, पेपर पढ़ने के बाद आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना शुरू कर दें, मिसाल आप किसी दोस्त को दिखा दें, यार मैंने बनाया आप देख लें, तो जो दोस्त आपका ऑलरेडी मास्टर पीएचडी कर रहा है तो आपको हेल्प करेगा कि आपने ये गलती की हुई, आपने ये गलती की हुई है, तो मैं भी आपको 4-5 मरतबा मॉडिफाई करने में तो टाइम लगेगा, फिर आप ट्रेन हो जाएंगे, तो फिर आपको एक्सपर्ट ही हो जाएगी कि मैं अब मुझे नॉलेज हो गई है रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपके पास सीवी, सीवी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि सीवी बनाते हैं तो हमारे पास स्क्रीन बना लेते हैं 3 पेज की, होता कुछ नहीं है, जब हम कोई स्टडी कर लेते हैं सीवी की तो हम 2 या 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, दूसरी चीजें हमारी बेकार होती हैं। तो जब भी आप सीवी बनाएं तो सिंगल पेज की बनाए, जिसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा दें, क्वालिफिकेशन में ये मॉड्यूल है, उसमें ये नहीं है कि भाई मैंने मैट्रिक की उस गांव से की है, फिर वहां से मैंने इस बोर्ड से की है, उसमें सिंपल लिख दें कि मिसाल मैट्रिक बोर्ड आपकी कितनी पसंद आई है, ठीक है, इसी तरह से आपकी इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट आपका बोर्ड कौन सा है, फिर आपकी कितनी पसंद आई है, आपके साथ बैचलर लेवल की है, बैचलर मिसाल केमिकल या बैचलर जूलॉजी, तो आप कितनी आपने पसंद उठाई है ये आप मैंशन कर दें, ठीक है, तो उसमें साल भी मैंशन करें कौन सा साल आप क्वालिफाई किए। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस मौजूद है आप उसमें मेंशन कर लेंगे भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ये मौजूद है, एक्सपीरियंस आपने मेंशन कर दिया, पता चल जाएगा इस बंदे ने 2 साल या 3 साल जो भी काम किया है कौन सी फील्ड में काम किया है। उसके बाद आपने आपकी रिसर्च स्किल, रिसर्च स्किल में आपके पास मिसाल आपने कोई राइटिंग आ रही है, आपका लिटरेचर रिव्यू आ रहा है, आपका पेपर पढ़ रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाना आ रहा है, ऐसे किस्म या एक्सपेरिमेंटल वर्क की आपका नॉलेज है, तो आप रिसर्च स्किल्स मेंशन करके ये मेरे पास मौजूद है और इस बेस पे मैं चाह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ मास्टर पीएचडी कर सकता हूँ, तो रिसर्च स्किल्स मेंशन कर लें। उसके बाद आते हैं आपके टेक्निकल स्किल्स, क्या टेक्निकल स्किल्स में आपके पास डिपेंड करता है कि कंप्यूटर्स में, ठीक है, उसके बाद आपकी इंग्लिश, आपकी जो स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स मौजूद है, या आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में अपनी आप इंपॉर्टेंस है तो वो आप मेंशन कर लें कि ये मेरे पास स्किल्स मौजूद है टेक्निकल। उसके बाद आपके पास फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, मान आपके पास जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किसमें आपके पास, सब्जेक्ट कौन से इंटरेस्टिंग, जो अक्सर आपने बैचलर लाइफ में जो सब्जेक्ट पढ़े उसमें आप बता दें मैं 5-6 सब्जेक्ट ये मेरे हैं जिसमें मेरी इंटरेस्ट मौजूद है, ठीक है, तो उसके बाद अपना जो नाम वगैरह है, नाम, फादर नेम प्लस पासपोर्ट नंबर, ठीक है, उसके बाद रेफरेंसेस मेंशन कर लें, अगर कोई मिसाल कोई भी प्रोफेसर किसी से बंदा रब्ता करना चाहे तो उसका मेंशन कर लें भाई डॉक्टर करीम क्या ये मेरा रेफरेंस है या दूसरा मूवी है, तो इस तरह का आप रेफरेंस मेंशन कर लेंगे तो एक आप सिंपल स्पेस आपकी सी भी आ जाएगी, ठीक है। माना कोशिश करें कि माना फिट साइज हो, माना ज्यादा लंबी ना हो, इंटरनेशनली मैंने प्रोफेसर का टाइम कम होता है, वो आपके एक ही नजर में पूरी चीज देखना चाहते हैं,
जनरल भी पास की हुई है और अपडेट सब्जेक्ट भी।
ठीक है,
ये हो गई नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की वो नहीं की एस में नहीं है 6.5 रेट
सही गुड है।
तो हमारे यहाँ क्या होता है, मैं हम ये यूनिवर्सिटी से तो हमारा एक सेमेस्टर ब्रेक है, जब ये इस यूनिवर्सिटी की आती है एडमिशन तो हमारे यहाँ पेपर चल रहे होते हैं, तो हम अप्लाई करने के लाइन में रहते और जब ये डेट गुजर जाती है तब हमारा रिजल्ट भी नहीं आता, जब रिजल्ट आता है तो हमारे यहाँ एम एस की भी सेमेस्टर तो पता यानी नहीं तो बाहर की जो भी एम एस सी या एम फिल की स्कॉलरशिप है तो वो 3 साल की हमारे यहाँ 3 साल के ध्यान दो 3 साल काम है
मुझे
बेहतर है कि पी एच डी बनना चाहिए।
नहीं वो ये मैं तो आपको बता रहा हूँ, हमारे आपने क्वालिफिकेशन जो बैचलर कर ली उसके ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है कि आप सिंगल मास्टर कर लें, मास्टर के बाद पी एच डी कर लें, ठीक है। नॉर्मली मुख्तलिफ कंट्री क्या होता है कि एक साल आपकी लैंग्वेज मस्त आती है, जैसे चाइना में काफी यूनिवर्सिटी में मस्त है कि एक साल आपकी लैंग्वेज दो साल के अंदर मास्टर हो सकती है। मगर कुछ यूनिवर्सिटी की कंडीशन होती है कि हमारे पास आपकी लैंग्वेज कम्प्लीट करनी है, चाइनीज लैंग्वेज करनी है, कोरियन जा रहे हैं तो कोरियन लैंग्वेज कम्प्लीट करनी है, जहाँ किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज का 1 साल का मस्ट है, उसके बाद आपने 1 साल लैंग्वेज कम्प्लीट कर ली, आपकी लेवल आती है 2-3 लेवल होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो कम्प्लीट करने के बाद आपकी मास्टर स्टार्ट हो जाएगी 2 साल की, तो इस तरह आपके 2 साल या 3 साल लग सकते हैं मास्टर में, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं भाई मुझे मास्टर करनी है 2 साल के अंदर, तो काफी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जहाँ पे ये कंडीशन मस्त नहीं होती, आपकी लैंग्वेज मस्त नहीं होती, जैसे आप जाए अपने रिसर्च अपनी कोर्स कंप्लीट करें आपकी 2 साल के अंदर अपने मास्टर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है कि आप मास्टर के बाद पीएचडी कर लें, पीएचडी का मिनिमम टाइम 3 साल है, मिनिमम टाइम कि आप 3 साल के अंदर अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद आपकी डिपेंड करता है कि आप रिक्वायरमेंट, अगर आपकी पब्लिकेशन आ जाती है 2 पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपकी 2 पब्लिकेशन आ गई तो मीन आपकी पीएचडी रिक्वायरमेंट कम्प्लीट है। जैसे पाकिस्तान में पीएचडी इंक्वायरी होती है कि पहले भाई आप इनिशियल सेमिनार दें, प्रपोजल जमा किया है, प्रपोजल के बाद आपका सेमिनार होगा, फिर मीटिंग बैठेगी, फिर आपके कमेंट्स आएंगे, उसके बाद आप 3 माह बाद चले गए मेरा काम हो गया अप्रूव हो गया, फिर आप काम स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। फिर 6 माह के बाद या 1 साल के बाद आप बुलाएंगे तो कहेंगे आप अपना इनिशियल सेमिनार दो, फर्स्ट सेमिनार तो फर्स्ट सेमिनार देंगे, वो भी लगता है कि तकरीबन 1 साल की जगह पे 2 साल लग जाते हैं फर्स्ट सेमिनार में, उसके बाद सेकंड सेमिनार दो, फिर फाइनल सेमिनार दो, थीसिस दो, उसकी एवोल्यूशन होगी, थीसिस वाइवा होगी। पाकिस्तान में पीएचडी मतलब तब टाइम है, जो भी पीएचडी करना है उसके लिए बड़ी बात है पीएचडी करना, यहाँ पे जिल्लत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आप आप टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं, आप कहेंगे ठीक है, आप पेपर पढ़ाएं, अपना एक टॉपिक बताएं कि आप कौन सी टॉपिक पे काम करेंगे, ठीक है। तो उसके दौरान क्या करता है स्टूडेंट को अपने लेबोरेटरी वर्क भी करता है, साइड में इक्विपमेंट जो मौजूद होते हैं उसकी ट्रेनिंग भी लेता है, प्लस आपकी रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू है उसकी स्टडी करता है। 3 माह के बाद उसको अंदाजा होता है कि अब ये जो टॉपिक है अगर इस टॉपिक पे मैं काम करूंगा तो मेरे लिए आसान है, मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आपकी एक मीटिंग होगी प्रोफेसर साहब, तो आप बताएंगे सर मेरी टॉपिक ये है और मेरा आगे भी ये होंगे, इस तरह से मैं काम कर सकता हूँ, तो प्रोफेसर कहेगा ओके यू कैन स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद आपके पास मना 2 साल या 3 साल मौजूद है पीएचडी में, अपने आप कोर्सेज कंप्लीट करेंगे साइड में, अपनी रिसर्च करेंगे, अपनी पब्लिकेशन करेंगे, जब आपकी 3 साल के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट कर ली तो फिर आप कहेगा नाउ यू आर वैलिड फॉर द पीएचडी, नाउ यू कैन गेट द पीएचडी।
उसमें अभी कोई भी बीच में मसला नहीं है, ना इनिशियल सेमिनार है, ना फाइनल सेमिनार है, ना कुछ है। मगर ये प्रोसेस आपकी वीकली बेस पे आपकी परफॉर्मेंस चेक करेगा कि आपने क्या काम किया है, आपकी अचीवमेंट क्या आई है, आपकी रिजल्ट क्या आई है, आपकी डेटा क्या आई है। उसमें फिर आपको ये होगा कि एक बना लेंगे प्रेजेंटेशन वीकली वाइज और प्रोसेस दिखा देंगे, उसके बाद रिकमेंडेशन आ जाएगी प्रोसेस तरफ से, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास वहाँ पे पी एच डी में इतना ज्यादा क्वारी नहीं है, अपने पाकिस्तान में दलील करते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं ऑप्शन पे, वहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी मौजूद है स्कॉलरशिप।
उसके बाद के मेरिट बनाएंगे,
उसके बाद आपको क्वालिफाई कर रहे हैं सर, आपका नाम आ रहा है, शॉर्टलिस्टिंग हो रही है, तो फिर आपको ईमेल करेगी कि कंग्रेचुलेशंस योर नेम इज सिलेक्टेड फॉर द फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद ऑप्शन देते हैं कि आपके पास कंट्री मौजूद है, तो आपके पास अमेरिका ऑप्शन दे रहे हैं, जर्मनी है, साउथ कोरिया है, या आपके पास चाइना है, मलेशिया मौजूद है, तो ये आपका ऑप्शन आते हैं कि आप दो कंट्री सिलेक्ट कर लें। ठीक, अब हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है, जैसे आप अमेरिका जाना चाह रहे हैं तो अमेरिका की जीआई इंटरनेशनल जीआई आप वो क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप वैलिड होंगे अमेरिका जाने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो मीन्स आप वो ऑप्शन नहीं रख सकते। ठीक है, इसी तरह से आप तुर्की जा रहे हैं, तुर्की लिए आप कह रहे हैं तुर्की जाना चाह रहा हूँ, तो तुर्की के लिए आपका आईएलटीएस जरूरी है, अगर आपका आईएलटीएस मौजूद है तो मीन्स आप तुर्की के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका चाइना है या मलेशिया है या साउथ कोरिया है, इनमें यूँ कहकर आप मिले या एडमिशन ले लें, एडमिशन ले लें, उसके बाद आप यहाँ पे आपकी कोई भी टेस्ट इंग्लिश टेस्ट होती है आप क्वालिफाई कर लें, आपकी आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से आप कोई भी दो कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे हांगकांग हो, साउथ कोरिया हो, चाइना हो, दो कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी में साउथ कोरिया, सेकंड नंबर चाइना, तो आप अप्लाई करते हैं भाई मैंने दो कंट्री सिलेक्ट कर लिया, आप इसमें एडमिशन कराते हैं। उसके बाद ये जो आप ऐसी थी देखेगी कि बंदे ने साउथ कोरिया में अप्लाई किया हुआ है या चाइना के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी होगी साउथ कोरिया की, वो आपसे रब्ता करेगी कि योर नेम इज रिकमेंडेड फॉर द एडमिशन, तो नाउ एडमिशन आर ओपन इन अवर यूनिवर्सिटी, यू कैन अप्लाई। उसके अलावा ऑनलाइन जो भी फॉर्म होंगे आप फिलअप करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आप अपलोड करके भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी एडमिशन फाइनल हो जाएगी कि आपकी एडमिशन फाइनल होगी हमारे पास। उसके बाद ऐसी थी कि डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आपका सिक्योरिटी बॉन्ड होता है, अगर आप फॉरेन में आप भेज रहे हैं, ठीक है, फॉरेन में जाने के बाद आप 5 साल वहां पे होंगे, 5 साल के बाद दोबारा आपको 5 साल पाकिस्तान में सर्वाइव करना है, अगर आप वापस नहीं आ रहे तो जितना पैसा आपके खर्च हो रहा है, 1 करोड़ आपके खर्च हो रहा है, तो उसकी पेनल्टी कौन देगा? उसके लिए वो सिक्योरिटी बॉन्ड लेते हैं, एक बंदा होता है गारंटियर, जो अपनी प्रॉपर्टी कोई दिखा दे, किसी का मकान मौजूद है या किसी पास जमीन मौजूद है वो आप दिखा देंगे, तो गारंटी के हिसाब से आप सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करेंगे, तो आप जमा होने के बाद आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाएगी कि आप जा सकते हैं। ठीक है, उसमें माना एसटीसी आपको वन टाइम टिकट देगी जाने की, जब आप जाएंगे, ठीक है, आप जैसे वहां पर चले गए आपकी ट्यूशन फीस हो जाएगी, तो यूनिवर्सिटी आपको पे कर देगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप मंथली तकरीबन $900 पर मंथ आप मिलेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा $900 में पाकिस्तान के 90,000 रुपीज के बराबर आपके पैसे मिलेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप साउथ कोरिया में जा रहे हैं, साउथ कोरिया में आपका खर्चा मैक्सिमम 30,000 है, आपकी 60,000 रुपये से आपकी सेविंग होगी, आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आप चाहे 1 साल के बाद आ जाएं, 2 साल के बाद आ जाएं, 3 साल के बाद आ जाएं, अपने पाकिस्तान आ सकते हैं बीच में, तो कोई कंडीशन नहीं है, मगर नाम वाले लड़के 1 साल के बाद आते हैं तो आप वहाँ पे स्टडी चलती रहेगी, आप वहाँ अपने पैसे मिलते रहेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, अपने पीएचडी आप कंटिन्यू कर लेंगे, एक आपकी ये मौजूद है। जब आप फल अपने एसटीसी स्कॉलरशिप पे चलेंगे, 3 साल के अंदर आपने अपना टाइम कंप्लीट कर लिया, तो फिर आप दोबारा पाकिस्तान में आके आप कहीं प्रोफेसर काम करेंगे, तो आपकी वहाँ पे तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख इतना पैकेज दे रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब आपका यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख तनखा है, बाकी जैसे आईबी संखर है या बेरा यूनिवर्सिटी है या काफी प्राइवेट यूनिवर्सिटी मौजूद है वहाँ पे तकरीबन 2 लाख 250 240 ये पैकेज मिल रहा है पर मंथ। ठीक है, ये पाकिस्तान का पैकेज मिल रहा है पीएचडी वालों को, तो जो दोस्त आईपी सेक्टर में तो उनका तकरीबन अभी 2.5 लाख भी मौजूद है, 240 भी है। ठीक है, जो जस्ट मास्टर करके आ रहे हैं उनका 150 आ रहे हैं पैकेज, तो इस तरह पैकेज मिल सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं तो मेहरान है, दाऊद है, यार इनमें का पैकेज आपको 1 लाख 1.5 लाख पैकेज मिल जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ठीक है, इतना आपकी पैकेज ऑफर हो सकते हैं आपको। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। वो खुद ही करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अगर आपके पास मार्क्स 60% आ रही है किसी भी आपके पास जो सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट में आपने 60% मार्क्स ले लिए तो वहां पे लगाते हैं 3 3 3। ठीक है, उसके बाद एक अलग फार्मूला भी आता है उनका कि आपका ओवरऑल कितनी बने, सब्जेक्ट कितने हैं, कितनी आपने पर्सनल ली हुई है, उसके बाद जीपी निकाल लेते हैं वहां से। तो नॉर्मली अगर आपका 60% सब्जेक्ट मार्क्स मौजूद है तो मेरे हिसाब से 3 GPA मौजूद है, 3 हो जाएगा। ईयर में याद नहीं है, वहाँ फॉर्मूला होता है, ठीक है, फसलें कितनी मौजूद है उसको एक पेंटे फैक्टर होता है, वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपका जीपीए कितना बन रहा है, ठीक है, वो एग्जाम में आज वाले का पता होता है जो बना में, और यदि 60% मार्क्स हैं तो फिर 3 GPA है आपके, अगर 60% डाउन जा रहे हैं तो आपके 3 GPA कम हो जाएंगे।
हाँ ये जो आपने
बताया
आर
एंड ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम
कर रहे होते
तो प्रोफेसर से जानते नहीं हो पाया या हम कोशिश करते हैं उन्हें ईमेल वगैरह वो रिस्पॉन्स नहीं करते।
मसला ये उठा है कि मसला ऐसा है जैसे प्रपोजल जो है ना मैं हम गलती करते हैं एक ही प्रपोजल बनाते हैं हम सारा भेजते हैं चाहे मुख्तलिफ वीडियो बनाया हमको भेज दिया हमें पता नहीं चलता है ना प्रोफेसर का फील्ड कौन सी रिसर्च में काम कर रहा है। अगर आप उसी फील्ड से रिलेटेड आपको प्रपोजल भेजेंगे तो फिर आपको रेस्पॉन्स मिलेगा।
ये भी तो होता है ना प्रपोजल हम इसलिए भेजते हैं ताकि वो हमारा टैलेंट देखना चाहता है इसमें काबिलियत है कि ये क्या करना चाहता है मेरे पास काम कर सकता है। इसलिए होता है जो हम यहाँ से प्रपोजल भेजते हैं तो वहाँ पे हमें वो रिसर्च करने को नहीं मिलती हमें वही रिसर्च मिलती है जो वो कर रहे होते हैं ऑलरेडी।
नहीं हम आपको प्रोफेसर देखना पड़ेगा उनका आपके पास एक डिपार्टमेंट के अंदर 10 प्रोफेसर मौजूद हैं तो पहले आप साहब को एक प्रोफाइल पढ़ना पड़ेगा नंबर ऑफ पब्लिकेशन देखें कौन सी पब्लिकेशन आ रही है उनका फील्ड कौन सी है उसके बाद आप अंदाजा लगाएं कि 10 प्रोफेसर की फील्ड कौन कौन से मौजूद हैं उन साहब को आप हाईलाइट करें उसके बाद देखें कि आप रिसर्च प्रपोजल जो मैंने बनाए हैं वो किस मुताबिक है। मिसाल आपके 10 से आपके 3 प्रोफेसर आप मैचिंग कर रहे हैं तो तीनों को उसी फील्ड के मुताबिक आप रिसर्च प्रपोजल भेजेंगे ठीक है। मिसाल मेरा फील्ड मिसाल वेस्ट वाटर पे आप मुझे वेस्ट वाटर में भेजेंगे तो मैं इंटरेस्ट लूंगा। अगर आप मुझे भेजेंगे कंप्यूटर का तो मैं तो कंप्यूटर तो मेरे रिलेटेड नहीं है तो मैं आपको रेस्पॉन्स ही नहीं दूंगा। अगर आप मेरी फील्ड का आप मुझे भेजेंगे रिसर्च प्रपोजल तो मैं इंटरेस्ट लूंगा फिर आपको रेस्पॉन्स भी दूंगा। हम जो गलती करते हैं रिसर्च प्रपोजल एक बनाते हैं वही हम 10 प्रपोजल में भेजते हैं चाहे उनकी फील्ड सेम हो या सेम ना हो तो फिर उसमें हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता। हम कहते हैं हमने यार 100 प्रोफेसर हमने ईमेल किए मगर हमें रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। मेन गलती ये करते हैं कि रिसर्च प्रोफेसर बनाएं मगर स्पेसिफिक और स्पेसिफिक प्रोफेसर भेजें तो फिर आपको रेस्पॉन्स चाहिए आएगा। एक पे एक आने की रिसर्च प्रोफेसर आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए आपकी CV जो है सिंपल होनी चाहिए अफेक्टिव तो अगर आप दोनों सही लिख रहे हैं और ईमेल भी शॉर्ट हो आपकी 3-4 लाइन के अंदर अपना पूरा इंट्रोडक्शन अपने दिखा दें कि मैंने आपकी लेबॉडी प्रोफाइल क्या है मैं आपके एंटर में काम करना चाह रहा हूँ मैं मास्टर स्टूडेंट या PhD स्टूडेंट आना चाह रहा हूँ अंडर द चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप तो आप 3-4 लाइन अंदर आप पढ़ लेगा तो पता चलेगा लड़का बेमान आना चाह रहा है क्या फोटो ये मौजूद है। अगर वो फिर आप देखेगा लड़का प्रॉपरली मुझे मोटिवेट कर रहा है तो फिर आप वो लेटर भेज देगा कि मैं आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ एज ए मास्टर या PhD स्टूडेंट। जब आपके पास एक्सेप्ट लेटर हाथ में आ गया उसके बाद उसकी एडमिशन आना होगा यूनिवर्सिटी की आप सारा फॉर्म फिलअप करेंगे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट करके आप भेजेंगे चाइना। उसके बाद उसकी जब कॉमेडी भेजेगी तो कॉमेडी वो आपको समॉप कर लेगी कि ये बंदा ऑलरेडी प्रोफेसर ने रिकमेंड किया हुआ है तो उसको बस ले करो अगर किसी ने रिकमेंड नहीं किया प्रोफेसर ने आपकी एप्लीकेशन ड्रॉप हो जाएगी। ये हम गलती करते हैं तो प्रोफेसर सेम होना चाहिए सेम प्रिसाइज एंड इफेक्टिव।
सर लास्ट में
अगर आप 3-4 साल नीचे लिख लें तो बेहतर है तो जो अंदाज हो जाएगा कि बंदे ने रिसर्च दिया हमें कितने पेपर पढ़ के बनाया है। आईएलटीएस के लिए हमारे पास है जैसे साउथ कोरिया में अभी कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है KGPS तो वहाँ पे आईएलटीएस रिक्वायरमेंट होती है उनकी स्कॉलरशिप सबसे बेहतर है जहाँ $1200 मास्टर के लिए $1500 PhD अगर आप अभी मास्टर के लिए जा रहे हैं तो आपको $1200 मिलेंगे ठीक है। इस तरह जाएंगे कि आईएलटीएस रिक्वायरमेंट होती है आईएलटीएस में 6.5 चाहिए या उससे ऊपर हो तो बेहतर है तो मिनिमम 6.5 होनी चाहिए बैंड। तो इस तरह से आपके पास मुख्तलिफ जर्मनी है जहाँ पास कोरिया है तो काफ़ी ऐसी कंट्री है जहाँ अनाउंस करती है स्कॉलरशिप उनकी मेन रिक्वायरमेंट होती है आईएलटीएस कि आईएलटीएस हमें चाहिए। अगर आप आईएलटीएस है तो फिर आपको वहाँ बना एलिजिबिलिटी आपकी ओके हो जाएगी आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे आईएलटीएस प्लस आपके रिसर्च प्रपोजल ये दोनों का निशान है कि आप आईएलटीएस अपनी होगी आपकी एप्लीकेशन की वैलिड है उसके बाद उसको मोटिवेट करने के लिए आपका रिसर्च प्रपोजल एंड प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर ये आप तीन का निशान है। उसके बाद आपकी प्रोफेसर ने हमें कैसे लूँ एक्सेप्टेंस लेटर और प्रोफेसर आपने ले लिया एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया तो मेरे हिसाब से मतलब 70% चांसेस होंगे कि आपकी इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अब एक आईएलटीएस वाली का करें आपकी एप्लीकेशन देने के लिए आप एलिजिबल हैं दूसरे नंबर पे इसका गेन करने के लिए आपने प्रोफेसर से ले लिया आंसर लेटर,
आपको
आप प्रोफेसर सीनियर से, तो आपका ये दोनों चीजें होगी तो मेरे फिर आप 70% चांसेस हैं कि आपकी एडमिशन वहाँ पे हो जाएगी आराम से। ठीक है,
डॉक्यूमेंटेशन कौन सा होना चाहिए?
डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पहले जो भी आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री आप बैचलर में कंप्लीट कर लें ट्रांसक्रिप्ट उनकी फोटो कापी डिग्री उसकी फोटो कापी आप एससीसी से अटेस्ट करा लें, एससीसी अटेस्ट करा लें प्लस के बाद फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्ट करा लें। वो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपको तारीख मिलेगी, आप तारीख पे चले जाएंगे कराची हेड ऑफिस, वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे प्लस फोटो कापी लेके जाएंगे, वो आप वेरीफाई करेंगे ये डॉक्यूमेंट सेम है, उसके बाद कहेंगे आप ये डॉक्यूमेंट आप भेज दें वहाँ पे इस्लामाबाद, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होगी आप फोटो कापी भेज देंगे वहाँ पे, अगर ओरिजिनल भी करानी है तो ओरिजिनल भेज देंगे, तो जो तारीख आपको मिलेगी उसी तारीख आपको जाके वहाँ पे आपको अटेस्ट मिल जाएगी आराम से।
ऑनलाइन
सर हाँ ऑनलाइन हो जाती है
सभी,
वो सिंपल होता है ऐसी भी तरफ से फॉर्म है वो आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे उसमें आपको तारीख मिल जाएगी, आप इस तारीख को आके इस टाइम पे आप कराची हेड ऑफिस में आके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस फोटो का भी लेके आए, वहाँ पे चालान होगा सबको माफी का 800 रुपये आपकी वेरीफिकेशन फीस है, तो जितने आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे उतने पैसे आपको देने होंगे, तो वहाँ पे चेक करेंगे ओरिजिनल प्लस फोटो कापी दोनों वेरीफाई कर लेंगे छपे लगाएंगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक कर लिए बोथ आर ओके दे आर करेक्ट, उसके बाद आप भेज देंगे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में आप भेज देंगे फिर वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अटैच करके आपकी एड्रेस को वापस कर देंगे, वो उस पर थोड़ा अपना आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा सर, आप एस सी के फॉर्म में जाएंगे तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा सर। आपको बाकी एक एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले आपकी होनी चाहिए हाथ में, अगर मसाला एप्लीकेशन आपको पता है कि आपकी फरवरी तक उसकी डेडलाइन मौजूद है आप अपनी तैयारी कर रहे हैं आपको पता है कि मैं एक दो माह के अंदर मैं अपनी टेस्ट क्वालिफाई कर लूँगा, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मैंने एल एस क्वालिफाई की भी है तो इस तरह से मैं ले सकता हूँ। ठीक है, आयुर्वेद अगर आपका नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तो आपके पास प्रोफेसर ऐसे मौजूद हैं, प्रोफेसर को आप जस्ट राजी करना है, प्रोफेसर आप कैसे साइन करेंगे उसकी पब्लिकेशन देखें कि पब्लिकेशन साल में कितनी आ रही है, अगर आपकी 5-6 पब्लिकेशन आ रही हैं या 10-12 पब्लिकेशन आ रही हैं तो मीन्स उसके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ज़्यादा है, तो आपके पास चांसेस मिल सकते हैं कि आपके पास स्कॉलरशिप कितने पॉसिबिलिटी हैं, एक प्रोफेसर पास पब्लिकेशन एक भी नहीं आ रही साल में तो मीन्स उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है वो गरीब है, जो प्रोफेसर पास नंबर ऑफ पब्लिकेशन साल में 8-10 आ रही हैं उसके मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे तो उसके पास फंडिंग मौजूद होगी, आप उसको प्रोफेसर को अपना सर प्रपोजल सीवी भेजें, अगर आपको रेस्पॉन्स दे रहे हैं तो मीन्स आपका चांस हो जाएगा, फिर उसका कम्प्यूटर रेफर करें मैं आपका पीएचडी करना चाह रहा हूँ या मास्टर करना चाह रहा हूँ आप मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें तो काफ़ी प्रोफेसर आपको दे देंगे। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि लड़का अच्छा है और मेरे काम का है तो काफ़ी प्रोफेसर आपको जैसे कोरिया में अप्लाई कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि मैं एमएस डिग्री पीएचडी के लिए जा रहा हूँ आप प्रोसेस मोटिवेट कर रहे हैं उसके बाद अपनी फंडिंग मौजूद है अपने प्रोजेक्ट मौजूद है तो आपको फिर इंशाल्लाह वो फंडिंग मिल जाएगी आराम से, तो इस तरह आप ले सकते हैं, मगर सबसे आसान तरीका आप कहना है कहना है कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल रही है आप जस्ट प्रोफेसर दे लेना अच्छा बेटर वो आपको ऐसे दे देगा मसला नहीं है तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी एडमिशन हो जाएगी आराम से। ठीक है, बाकी आपको थोड़ी मेहनत करनी है आप कह रहे हैं हमें साउथ कलर जाना है किसी और कंट्री जाना है तो उसके लिए फिर आपको प्रोफेसर को मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि फंडिंग उससे लेनी है प्रोफेसर से तो उसके लिए फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी जैसे प्रोफेसर बनाना सीवी बनाना फिर उसमें आप किसी ई मेल किस तरह कर रहे हैं किस तरह से उसे मोटिवेट कर रहे हैं प्रोफेसर को उसे क्या पता भाई आप क्वालिफिकेशन क्या है कहाँ से किए सीवी जरूरी है सीवी और जैसे प्रोपोजल बहुत सारा इम्पोर्टेंट है नाम है एन डी एस का जो डोगर का सीरीज आती है डोगर सीरीज वो स्टडी कर लें वहाँ से आपको अंदाज हो जाएगा और दूसरे क्या आते हैं इंटरनेशनल आते हैं हमें ज़्यादा जाने जरूरत नहीं है आपकी डोगर सीरीज वाला जो एन डी एस वाला किताब है वो काफ़ी है उससे आप स्टडी कर लें। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो ना डिस्कशन तो बहुत अच्छी है तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कर रहा हूँ।